वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से लुका रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओ, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि यीशु धनवानों से प्रसन्न नहीं था, परंतु उसने उस धनवान सुबेदार के विश्वास की सराहना की और उसके दास को जीवन दान दिया। यीशु चाहता है कि हम चट्टान पर अपना घर बनाएं और वही हमारी चट्टान है। इसी चट्टान ने नाइन की विधवा को थामा और उसके पुत्र को मुर्दों में से जीवित किया। और अब हम देखेंगे कि यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्यों को संदर्भ सहित क्या उत्तर देते हैं और किस प्रकार एक पापिन स्त्री की आभार व्यक्ति स्वीकार करते हैं। हम लुका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 19 और 20 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से दो को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और दूसरे की बाट देखें। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो हैं। प्रिय मित्र, मत्ती और मरकुस के सुसमाचार के अध्ययन में हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में देख चुके हैं। उसका प्रचार बड़ा ही सरल और सजीव एवं विचित्र था। उसकी वेशभूषा भी असामान्य ही थी, परंतु आज के धार्मिक अतिवादियों की नाई नहीं, ये तो मानसिक रोगी प्रतीत होते हैं। उसकी वेशभूषा से वह असामान्य नहीं हुआ, उसकी विलक्षणता उसके संदेश एवं प्रचार शैली में थी। उसे परमेश्वर ने जन्म से पूर्व ही चुन लिया था। हम भी परमेश्वर की बुलाहट को सुनिश्चित कर लें, उचित होगा तब धार्मिक वेशभूषा धारण करें। कुछ लोगों की मानसिकता है कि वस्त्र धारण करने से हम धर्मी प्रतीत होते हैं। मेरे प्रिय मित्र, बहुत समय पूर्व एक महिला हमारे रेडियो कार्यक्रम के मुख्यालय के बाहर सर्वेक्षण कर रही थी। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या काम करता हूँ। मैंने कहा कि मैं एक प्रभु का दास हूँ और प्रभु की सेवा करता हूँ। और तब उसने पूछा कि मसीह बनने के लिए क्या आवश्यक है। उसने कहा, आपको अपने पड़ोसी से भला व्यवहार करना है, किसी की आलोचना नहीं करना है, किसी के साथ अभद्र व्यवहार की अपेक्षा मित्रता का व्यवहार रखना है। इस प्रकार उसने मसीही व्यवहार की लंबी सूची सुना दी। मैंने उससे पूछा, क्या आपके विचार में मसीही जीवन बाहरी दिखावा है। कहा, नहीं, मसीही विश्वास प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध है। यह मसीह की नकल से कहीं अधिक है या धार्मिक वेशभूषा से भी गहरा है। यह नया जीवन है। यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 17 पद में हम इसे पाते हैं। मेरे मित्रों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नए नियम का नहीं, परंतु वह वास्तव में पुराने नियम का अंतिम भविष्यवक्ता है। वह पुराने और नए नियम की बड़ी खाई में सेतु है, अर्थात एक पुल का काम करता है। वह प्रतिष्ठित शामुएल, एलिया, यसाया तथा यर्मिया की श्रेणी में आता है। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु धार्मिक अगुओं से क्या कहते हैं। मत्ती 23 उसके 29 से 31 पद में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो और कहते हो, यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनके साथ शामिल न होते। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। और उन्होंने सिद्ध किया कि वे उन हत्यारों की संतान थे। यूहन्ना अंतिम भविष्यवक्ता बंदीगृह में था और शीघ्र ही घात होने पर था, अर्थात यूहन्ना मसीह की बाट जो रहा था। अतः उसने यीशु से पूछकर निश्चित करना चाहा कि वही मसीह है या किसी और का इंतजार करें। कुछ लोगों का कहना है कि यूहन्ना अत्यधिक निराश था क्योंकि वह बंदीगृह में था। मुझे तो यह बात अति विचित्र लगती है। यूहन्ना ने मसीह के आगमन की घोषणा की थी और परमेश्वर के राज्य के लिए राजा का मार्ग तैयार कर रहा था। यूहन्ना ने मसीह को पहचाना था, वरन कहा भी, जिसे हम लुका 3 के 16 और 17 में पढ़ते हैं, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मेरे प्रिय मित्रों, यूहन्ना परमेश्वर के राज्य को संपूर्ण महिमा, गरिमा और सामर्थ में देखना चाहता था। यही कारण था कि उसने अपने शिष्यों को यीशु से पूछने के लिए भेजा। आप यहाँ पर देखें कि यीशु यूहन्ना के शिष्यों का हार्दिक स्वागत करता है और उन्हें रोके रखता है। हम लूका 7 अध्याय उसके 21 से 23 पद में पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी, और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। प्रिय मित्र, यीशु ने यूहन्ना के शिष्यों के सामने आश्चर्य कर्म किए कि वे जाकर यूहन्ना को वृतांत सुनाए। यसाया उसके चमत्कारों की भविष्यवाणी कर चुका था, जिसे हम 35 अध्याय के 5 और 6 पद में देखते हैं। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरने की सी चौकड़ियां मारेगा और गूंगे अपने जीभ से जय जयकार करेंगे। मेरे मित्रों, यीशु ने यूहन्ना के शिष्यों से कहा कि वे जाकर यूहन्ना को ये सारी बातें बता दें कि उन्होंने भविष्यवाणी की पूर्ति में यीशु के काम स्वयं देखे हैं। यीशु जानता था कि वह उस गति से नहीं चल रहा है जिस गति से यूहन्ना ने आशा की थी, परंतु वह यूहन्ना से उस पर भरोसा रखने को कह रहा था। आज वह आपसे और मुझसे भी यही अपेक्षा करता है कि यदि हम समझ भी ना पाएं तो भी विश्वास करें। शक करने का यह अर्थ नहीं कि आप अधिक बुद्धिमान हैं। पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 18 पद में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। मित्रों, शक करना मूर्खता है, क्योंकि शक के कारण अर्थात संदेह के कारण आप नाश होने वालों की श्रेणी में आते हैं। अनेक विद्वान जीवित संसार से दूर पुस्तकालयों में बैठे बाइबल को स्वीकार करने की बौद्धिक कठिनाइयों पर प्रकाश डालते रहते हैं। वे मसीह के ईश्वरत्व और उसके लहू से उद्धार प्राप्ति पर शंका व्यक्त करते हैं। मेरे मित्रों, मैं तो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं और आशा करता हूं कि आप भी विश्वास करते हैं। हम लूका 7 अध्याय उसके 24 और 25 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास में रहते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, क्या यूहन्ना हवा से हिलता सरकंडा था? कदापि नहीं, वह दृढ़ एवं अटल था। हम लूका 7 अध्याय के 26 और 27 पद में आगे पढ़ते हैं, तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा। मेरे मित्रों, यह मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 का उद्धरण है और सिद्ध करता है कि यूहन्ना मसीह का अग्रदूत है, अर्थात उसके आगे आने वाला व्यक्ति वही है। तब हम लूका 7 अध्याय के 28 और 29 पद में आगे पढ़ते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। प्रिय मित्र, यूहन्ना को एक महान श्रद्धांजलि दी गई। तब हम आगे बढ़ते हैं, लूका 7 उसके 30 से 32 पद में लिखा हुआ है, पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया। सो मैं इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं कि वे किसके समान हैं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसली बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुम न रोए। मेरे प्रिय मित्रों, दूसरे शब्दों में वे बिगड़ी संतान थे। मैं लगभग 20 वर्षों से प्रभु की सेवकाई में हूं और मेरा पूरा पूरा समय आत्मिक शिशुओं को दूध पिलाने अर्थात उन्हें वचन सुनाने सिखाने और धार्मिक अवयव तैयार करने में बीता। जिन्हें यीशु संबोधित कर रहा है वे न तो आनंदित रहना चाहते थे और न ही दुख मनाना चाहते थे। मुझे आश्चर्य नहीं है कि आज की कलीसियाओं में भी ऐसे ही लोग हैं। हम लूका 7 अध्याय उसके 33 से 35 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना रोटी खाता आया ना दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और तुम कहते हो देखो पेटू और पियंकड़, मनुष्य चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र है, पर ज्ञान अपनी सब संतानों से सच्चा ठहराया गया है। मित्रों, मैंने लोगों को कहते सुना है, मुझे वह प्रचारक अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह बुद्धिमानी की बातें करता है और उसकी आवाज एक ही स्वर पर चलती है। फिर वे ही कहते हैं दूसरे प्रचारक के लिए, मुझे वह प्रचारक अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह मंच पर बहुत हाथ मारता है और चिल्लाता है और बहुत कूदता है। समस्या इन प्रचारकों की नहीं है परंतु उन बिगड़े सदस्यों की है जो केवल शिकायत करना जानते हैं, जैसे आप और मैं। यही यीशु उन लोगों के लिए कह रहा था और आज भी कहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फरीसी के घर यीशु का भोज। लूका 7 अध्याय के 36 पद में लिखा हुआ है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर, सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि यह एक विशेष घटना है कि यीशु भोज पर गया। यीशु फरीसियों की आलोचना करता था और किसी फरीसी द्वारा यीशु को भोज पर आमंत्रण करना विश्वास करने योग्य नहीं है। उस फरीसी ने यीशु की किसी चूक को अर्थात गलती को पकड़ने के लिए उसे भोजन पर आमंत्रित किया था ताकि उसके गलती को पकड़े और उसे दोषी ठहराए। हम लूका 7 अध्याय उसके 37 से 39 पद में पढ़ते हैं, और देखो उस नगर की एक पापीनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। मेरे प्रिय मित्रों, जब यीशु उस फरीसी के घर में था तब एक स्त्री वहां आई। उसके हाथ में इत्र का एक पात्र था। उस युग में पड़ोसियों को अधिकार था कि वे अपने पड़ोसियों के घर आए, अतिथियों को देखें और दीवार के सहारे खड़े होकर या उकड़ू बैठकर उनकी गतिविधियों को देखें। उन दिनों में कुर्सियां नहीं थी, वे तख्तों पर आधा लेटते थे और इसी प्रकार यीशु भी अपने हाथ पर सिर रखकर आधा लेटे हुए थे। उसके पांव तख्त के सिरे की ओर थे। वह अपने मेहमानदार से बातें कर रहा था और यह स्त्री उसके पांव के पास खड़ी होकर के रो रही थी क्योंकि उसके पाप क्षमा किए गए थे। वह अपने बालों से उसके पांव को भी पोंछ रही थी और अंत में उसने उसके पांव चूमे और उन पर इत्र डाला। मेरे प्रिय मित्रों, फरीसी ऐसी स्त्रियों से दिन रहते बात नहीं करते थे, अंधेरा होने के बाद ही वे उनसे संपर्क करते थे। जब उसने देखा कि यीशु उस स्त्री के प्रति छुआछूत का प्रदर्शन नहीं कर रहा था तो उसने मन में यही निष्कर्ष निकाला कि यह झूठा भविष्यवक्ता है, अन्यथा वह उस स्त्री के बारे में जान लेता कि वह किस प्रकार की स्त्री है। मेरे मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यीशु दो कर्जदारों का दृष्टांत सुनाते हैं। लुकार्ची सुसमाचार 7 अध्याय उसके 40 से 43 पद में हम पढ़ते हैं, यह सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा कि हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजान के दो देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार धरता था। जबकि उनके पास पटाने के लिए अर्थात चुकाने के लिए कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा। शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि यीशु ने कहा, शमौन मैं तुझे एक कहानी सुनाऊं। उसने कहा, हाँ गुरु कह। लूका के वर्णन में यह एक उत्तम दृष्टांत है, इससे आपको यीशु का संकेत समझ में आएगा। तब हम लूका उसके 7:44 को पढ़ते हैं। लिखा है, और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोछा है। यहाँ पर यीशु ने अभी तक तो इस स्त्री पर विशेष ध्यान नहीं दिया था, परंतु अब वह उसे चर्चा का विषय बनाते हैं, क्योंकि शमौन के मन में अनुचित विचार उठ रहे थे। यीशु उस फरीसी को आड़े हाथ लेता है और कहता है, शमौन, तू इस स्त्री को देखता है? नहीं, तू गहराई में नहीं देख पा रहा है। यही कारण है कि मेरे विचार में उस फरीसी का बोझ सद्भावना का नहीं था, यीशु ने उससे कहा। हम लूका 7:45-48 में पढ़ते हैं, तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु के कहने का अर्थ था कि उस फरीसी में शिष्टाचार नहीं थे, क्योंकि उसने प्रथा के अनुसार यीशु के पांव पर पानी नहीं डाला था कि वह उन्हें धोता। उसे अपने अतिथि के सिर पर तेल डालना था और उसे चूमना था, परंतु उसने उसे कुछ भी नहीं दिया। शमौन ने कोई शिष्टाचार नहीं निभाया। मैं बड़ी कामना करता हूं कि इस भोज में उपस्थित होता। यीशु की बातों से शमौन के चेहरे का रंग उड़ गया। यह स्त्री पापों की क्षमा चाहती थी और प्रभु ने उसे क्षमा किया। उसने यीशु को सही उत्तर दिया, परंतु उस ढोंगी ने पाप प्राप्ति का यत्न नहीं किया, वह पाप से ही घिरा रहा। हम लूका 7:49-50 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। मेरे मित्रों, यहाँ पर उस स्त्री को पाप की क्षमा मिली, लेकिन जिसके घर में हो गया उस व्यक्ति को नहीं, क्योंकि उसने प्रभु को अपने जीवन में आने नहीं दिया। यह आज अति व्यवहारिक है। आप चाहे किसी कलीसिया के सदस्य भी क्यों ना हो, परंतु यदि आप यीशु के पापों की क्षमा याचना नहीं करेंगे तो आप नाश होंगे। आज हम सब विश्वासियों के लिए भी एक अवसर है, हम हर एक श्रोताओं के लिए भी एक अवसर है कि हम प्रभु यीशु को न केवल अपने घर में आमंत्रित करें, बल्कि अपने हृदय में आमंत्रित करें, उसके सामने अपने पापों को स्वीकार कर लें, जिस प्रकार से उस पापिन स्त्री ने स्वीकार कर लिया और उसके द्वारा से उसे पापों की क्षमा मिली। मेरे मित्र, आपके पाप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी भयानक क्यों ना हो, वो आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं कि आप उसके पास आएं और अपनी गलतियों को आप स्वीकार कर लें और कहें, प्रभु, मैंने गलतियां की है, मुझसे गलतियां हुई है, मैंने पाप किया है, मैं पापी हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। केवल आप ही मुझे क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने बहुमूल्य लहू को कलवरी क्रूस पर बहाया है। मेरे मित्र, जब आप प्रार्थना करते हैं तो निश्चय ही प्रभु आपको क्षमा करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप प्रभु के उन आशीषों को पाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर की निकटता में अपने जीवन को लेकर के आएं और जांचें। हमारे अत्यंत प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया, ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें इस बात का स्मरण दिलाया है कि आप सचमुच में क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। केवल आप हैं जो हमें क्षमा दे सकते हैं, केवल आप हैं जो हमें उद्धार दे सकते हैं, क्योंकि इस संसार में और कोई नहीं जो हमें क्षमा दे सकता है, क्योंकि आप हैं जो हमारे पापों के बदले में कलवरी क्रूस पर अपने पवित्र लहू को बहा दिया, और उस लहू के द्वारा आप हमें शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे उन प्रिय भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में पाप में घिरे हुए हैं, हर एक प्रकार की बुराई से घिरे हुए हैं, जो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। प्रभु, आप उन पर कृपा दृष्टि करें। इस समय जो प्रार्थना कर रहे हैं, हत्या है, व्यभिचार है, चोरी है, कुदृष्टि है, निंदा है, अभिमान है, लुचपन है, और ऐसे बहुत बड़े भयानक और बुरे बुरे काम जो उन्होंने किए हैं, जो उनके माता पिता, उनके दोस्त, उनके प्रियजन नहीं जानते हैं, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। प्रभु, आप उन्हें क्षमा करें। उनके जीवन को आप बदल दें, वो अपने शांति आप उनके जीवन में डाल दें, ताकि प्रभु वो आपको अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस जीवित वचन के लिए जिसे आपने हमें दिया है। हम आशा करते हैं कि आपने हमारे श्रोताओं से बातचीत किया है, हम सबको आपने आशीष दिया है। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके इकलौते बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
यीशु है मेरा मुक्तिधारा, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। यीशु है मेरा मुक्तिधारा, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। आए विपत्ति चाहे तूफान, आए विपत्ति चाहे तूफान, उसमें मैं पाता शरण स्थान, उसमें मैं पाता शरण स्थान। यीशु है मेरा मुक्ति धार, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। पाप की लहरों से घिरा हुआ था, न कोई मंजिल और न किनारा। पाप की लहरों से घिरा हुआ था, न कोई मंजिल और न किनारा। वो आया बनकर मेरा सहारा, वो आया बनकर मेरा सहारा। पाप की लहरों से मुझे उबारा, पाप की लहरों से मुझे उबारा। यीशु है मेरा मुक्ति धार, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। जीवन था मेरा पाप की खाई, सब दूर निराशा रहे अंधेरी। जीवन था मेरा पाप की खाई, सब दूर निराशा रहे अंधेरी। क्रूस की ओर जब दृष्टि उठाई, क्रूस की ओर जब दृष्टि उठाई, किरण जीवन की हृदय में आई, किरण जीवन की हृदय में आई। यीशु है मेरा मुक्ति धार, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। आए विपत्ति चाहे तूफान, आए विपत्ति चाहे तूफान, उसमें मैं पाता शरण स्थान, उसमें मैं पाता शरण स्थान। अब कोई डर नहीं और ना निराशा, यीशु ही केवल धन्य आशा। अब कोई डर नहीं और ना निराशा, यीशु ही केवल धन्य आशा। शीघ्र वो आए लेने
यही है दिल की अभिलाषा, यीशु है मेरा मुक्ति धाम, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। आए विपत्ति चाहे तूफान, आए विपत्ति चाहे तूफान, उसमें मैं पाता शरण स्थान, उसमें मैं पाता शरण।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, फिर गई है कलिया नई, यीशु बाहर लाया है।
जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, मिल गई है कलिया नई, यीशु बाहर लाया है।
जिंदगी मेरी
है क्या, पल ही तो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का।
घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, यीशु बाहर लाया है।
जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, शक रहेगा कदम डगमगाए, हाथ वो थामेगा।